दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके मन में कभी न कभी ये तीन सवाल ना उठे हों। ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है और असल में है कैसा? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से पूछे जा रहे हैं। आज हम इन्हीं सवालों की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे और वो भी पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के विचारों के माध्यम से। हमारे पास उनकी एक बहुत ही गहरी पुस्तक है जिसका नाम ही है ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ कोई दार्शनिक बहस छेड़ना नहीं है। हम तो ये समझना चाहते हैं कि इन सवालों के जवाब हमारी पर्सनल ग्रोथ, हमारे परिवार और समाज के लिए प्रैक्टिकल लेवल पर क्या मायने रखते हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। पूज्य गुरुदेव की सबसे खास बात यही है कि वो अध्यात्म को कोई अलौकिक चीज नहीं मानते, वो इसे एक प्रैक्टिकल साइंस की तरह देखते हैं, एक जीवन जीने की कला। आज की इस चर्चा में हम यही देखेंगे कि कैसे वो ईश्वर की पूरी अवधारणा को तर्क और मनोविज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। ये सिर्फ मतलब आस्था का विषय नहीं है, ये समझ का विषय है।
तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं, क्या ईश्वर सच में है? क्योंकि एक तरफ विज्ञान है जो हर चीज का कारण ढूंढता है और दूसरी तरफ ईश्वर हमें दिखता नहीं है, तो इस पर पूज्य गुरुदेव का क्या तर्क है?
वो बहुत ही सरल और सहज तर्क से शुरुआत करते हैं। वो कहते हैं, किसी भी चीज के अस्तित्व को मानने के लिए उसे आंखों से देखना जरूरी नहीं है। हम हवा को नहीं देख सकते पर महसूस तो करते हैं, है ना?
हाँ, ये तो है।
बिजली का तार में करंट नहीं दिखता पर उसका प्रभाव दिखता है। तो वो कहते हैं कि अपने आसपास की दुनिया को ही देखिए,
जैसे ये पूरा ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, सितारे।
बिल्कुल, सूरज का रोज अपने समय पर निकलना, ऋतुओं का बदलना, ये सब इतने सटीक नियम से चल रहा है जैसे कोई बहुत ही डिसिप्लिन सिस्टम हो। और सिर्फ बाहरी क्यों, अपने शरीर को ही देख लीजिए, दिल का धड़कना, सांसों का चलना, ये इतनी जटिल मशीन है कि
हाँ, मतलब एक छोटी सी घड़ी भी बिना बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स अपने आप कैसे चल रहा है?
यही
उनका मूल तर्क है।
वो कहते हैं कि इस सृष्टि की हर रचना अपने रचयिता के होने का सबूत दे रही है।
ठीक है,
जैसे कोई सुंदर पेंटिंग अपने पेंटर की गवाही देती है, भले वो सामने ना खड़ा हो
जी।
इसी तरह ये सृष्टि ही अपने निर्माता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब इस शक्ति को कोई प्रकृति कह दे, कोई कॉस्मिक लॉ कह दे, या अध्यात्म में ईश्वर कह दे,
नाम से फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, नाम से फर्क नहीं पड़ता, पर एक संचालक शक्ति है, इस सच को नकारा नहीं जा सकता।
ठीक है, तो अगर हम ये मान भी लें कि कोई एक संचालक शक्ति है, तो अगला सवाल मन में आता है कि वो है कैसी, क्या उसका कोई रूप है? पूज्य गुरुदेव इसे आद्य बीज शक्ति कहते हैं, ये क्या है?
आद्य बीज शक्ति का मतलब है द प्राइमल सीड एनर्जी, यानी वो मूल ऊर्जा जिससे ये पूरा जड़ चेतन जगत बना है और चल रहा है। इसे आप यूनिवर्स का सोर्स कोड समझ सकते हैं।
और ये निराकार है, फॉर्मलेस है,
जैसे बिजली। बिल्कुल, जैसे बिजली का कोई रूप नहीं, वो अदृश्य है, पर पंखे में घूमती है, बल्ब में चमकती है, वैसे ही ये शक्ति हर कण में मौजूद है, पर उसका अपना कोई एक आकार नहीं है।
तो फिर ये जो हम देवी देवताओं के इतने सारे रूप देखते हैं, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, इनका क्या मतलब है? अगर ईश्वर निराकार है तो ये साकार रूप कहाँ से आए?
यहाँ पर पूज्य गुरुदेव एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का मन जो है वो निराकार चीज पर टिक नहीं पाता। ध्यान करने के लिए हमें एक आधार चाहिए, एक सिंबल चाहिए। ये जो देवी देवताओं के रूप हैं, ये उसी निराकार ईश्वर के अलग अलग गुणों के साकार प्रतीक हैं।
अच्छा, मतलब जैसे राम मर्यादा के प्रतीक है, कृष्ण प्रेम और कर्मयोग के।
हाँ, और दुर्गा शक्ति की।
सही,
बिल्कुल। ये मूर्तियां या चित्र असल में ईश्वर नहीं है, ये ध्यान के लिए बनाई गई ध्येय प्रतिमा है, मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इनका मकसद है कि जब हम इन रूपों का ध्यान करें तो इनके गुणों को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें।
तो ये एक तरह के स्पिरिचुअल रोल मॉडल्स हुए।
हाँ, आप कह सकती हैं।
यहाँ पर एक और बात दिमाग में आती है, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने आदर्शों के हिसाब से ईश्वर की कल्पना करता है, इसीलिए शायद अलग अलग संस्कृतियों में ईश्वर के चित्र भी अलग अलग हैं।
जी हाँ, ये एक मनोविज्ञानिक सत्य है। हम ईश्वर की कल्पना अपनी समझ और अपनी जरूरतों के हिसाब से ही करते हैं। एक योद्धा के लिए ईश्वर शक्तिशाली होगा, एक कलाकार के लिए सौंदर्य का प्रतीक, लेकिन पूज्य गुरुदेव आगाह करते हैं कि हमें प्रतीक और सत्य के बीच का अंतर याद रखना चाहिए।
मूर्ति पूजा का लक्ष्य मूर्ति में बसे गुणों को पूजना है, सिर्फ पत्थर को नहीं।
बिल्कुल,
यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर ईश्वर एक सिस्टम है, एक शक्ति है, तो फिर वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? ये सवाल तो हर किसी को परेशान करता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है।
पूज्य गुरुदेव के अनुसार ईश्वर एक निष्पक्ष साक्षी मात्र है, अ साइलेंट विटनेस। उसने सृष्टि के नियम बना दिए हैं और अब वो किसी से पक्षपात नहीं करता। वो न तो किसी की स्तुति से खुश होता है, न निंद्रा से नाराज।
लेकिन फिर न्याय कैसे होता है? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे सजा कौन देता है?
इसके लिए उन्होंने कर्म का एक स्वचालित विधान बनाया है, सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे समझाने के लिए वो एक चरवाहे का बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। एक चरवाहा अपनी गायों को चराने ले जाता है, लेकिन वो हर गाय के पीछे डंडा लेकर नहीं भागता। वो बस हर गाय के गले में एक मोटी भारी लकड़ी का टुकड़ा बांध देता है, जिसे ठेंगर कहते हैं।
अच्छा, वो जो गले में लटका रहता है।
हाँ, अब जब तक गाय शांति से चलती है तब तक वो लकड़ी उसे कोई तकलीफ नहीं देती, लेकिन जैसे ही वो शरारत करती है, किसी के खेत में घुसने के लिए भागती है,
उछल कूद करती है,
तो वही लकड़ी उसके घुटनों से टकराती है और उसे दर्द देती है। चरवाहा दूर बैठा सब देख रहा है, पर वो हस्तक्षेप नहीं करता।
अरे वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। तो इसका मतलब है कि हमारे कर्म ही वो ठेंगर है। अच्छा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही कुछ गलत करेंगे वही कर्म हमें सजा देगा।
आपने एकदम सही समझा। ईश्वर हमें कर्म करने की पूरी आजादी देता है, लेकिन उसके फल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह ऑटोमेटेड है। उसमें कोई सिफारिश या प्रार्थना काम नहीं करती। अच्छा या बुरा फल हमारे अपने कर्मों का ही नतीजा है।
पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, अगर ईश्वर को हमारी पूजा पाठ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर हजारों सालों से इंसान ये सब क्यों कर रहा है?
पूज्य गुरुदेव इसका एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि उपासना का असली उद्देश्य ईश्वर को खुश करना है ही नहीं, उसका उद्देश्य है खुद को बेहतर बनाना।
मतलब पूजा हमारे अपने लिए है, ईश्वर के लिए नहीं, ये कैसे काम करता है?
यह साइकोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है। गीता में भी कहा गया है, यो यक श्रद्धा सा एव सा, यानी जो जैसा चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। जब हम किसी सद्गुणी देवता, मान लीजिए भगवान राम का ध्यान करते हैं और उनके गुणों को याद करते हैं, उनका धैर्य, उनका कर्तव्य पालन, तो धीरे धीरे वो गुण हमारे अवचेतन मन में उतरने लगते हैं।
तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही बनने लगता है?
बिल्कुल, ये एक तरह की मेंटल कंडीशनिंग है।
और तीर्थ यात्रा?
उनका भी मूल उद्देश्य आत्मसुधार ही था। जैसे पुराने जमाने में 100 योजन पैदल चलने से शरीर का व्यायाम होता था, सेहत अच्छी होती थी, सत्संग से ज्ञान बढ़ता था। इन्हीं फायदों को प्रतीकात्मक भाषा में ईश्वर की प्रसन्नता या पुण्य कह दिया गया।
अच्छा,
तो ये व्यक्ति के अपने पुरुषार्थ का ही फल था।
जी,
लेकिन पूज्य गुरुदेव एक और तीसरे ईश्वर की भी बात करते हैं, जिसे वो पाप प्रपंच का ईश्वर कहते हैं, और ये समाज के लिए सबसे खतरनाक है।
यह कौन सा ईश्वर है?
ये वो ईश्वर है जिसे चालाक और स्वार्थी लोगों ने अपने फायदे के लिए गढ़ा है। ये वो मान्यताएं हैं कि ईश्वर ही किसी को अमीर या गरीब बनाता है, वही भाग्य लिखता है,
या फिर गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं।
हाँ, या किसी पुजारी को पैसा देकर स्वर्ग का टिकट खरीदा जा सकता है।
मतलब वो सारी धारणाएं जो इंसान को उसकी जिम्मेदारियों से भटकाते हैं।
एग्जैक्टली, पूज्य गुरुदेव इसे समाज के लिए अफीम की गोली कहते हैं। ये एक ऐसा नशा है जो इंसान को कर्तव्य विमुख और भाग्यवादी बना देता है, और समाज में हो रहे अन्याय को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है।
तो इस भटकाव से निकलकर आत्मनिर्माण का सही और प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? पूज्य गुरुदेव एक विशेष साधना का जिक्र करते हैं, सो अहम साधना। ये कैसे काम करती है?
सो हम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली ध्यान की तकनीक है। इसका शाब्दिक अर्थ है वो मैं हूँ। इसका पहला कदम है अपने लिए एक ध्येय प्रतिमा चुनना,
यानी एक रोल मॉडल।
वो कोई भी हो सकता है, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, कोई भी, जिनके गुण आपको प्रेरित करते हों। फिर किसी शांत जगह पर आराम से बैठकर अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगाना होता है।
और सो और हाँ का क्या रोल है इसमें?
जब सांस धीरे धीरे अंदर आती है तो मन में सो ध्वनि का चिंतन करना है, और इसके साथ ये भावना करनी है कि मेरे आदर्श की जो दिव्यता है, उनके जो सद्गुण हैं, जैसे साहस, प्रेम, शांति, वो सब इस सांस के साथ मेरे अंदर आ रहे हैं।
और जब सांस बाहर जाती है?
जब सांस सहजता से बाहर जाती है तब हाँ ध्वनि का चिंतन करना है। हाँ अहंकार का प्रतीक है, तो भावना ये करनी है कि मेरे अंदर का जो मैं है, मेरी जो कमजोरियां हैं, वो सब इस सांस के साथ बाहर निकलकर उस महान आदर्श में विलीन हो रही हैं।
सो मतलब दिव्यता का प्रवेश, हाँ मतलब अहंकार का विसर्जन।
बिल्कुल,
ये तो बहुत गहरा है।
तो रोज ऐसा करने से व्यक्तित्व में बदलाव आता है?
नियमित अभ्यास से मन एकाग्र होता है और आपका अवचेतन मन रीप्रोग्राम होने लगता है और आप धीरे धीरे सचमुच वो बनने लगते हैं जिसके जैसा बनने का आप ध्यान कर रहे थे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है? इन सवालों के जवाब हमें कहाँ मिलेंगे?
पूज्य गुरुदेव के दर्शन का सार यही है कि इन सवालों के जवाब किसी आसमान में या मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो हमारे अपने अंदर हमारी अपनी समझ में छिपे हैं।
तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है, नियमों की एक व्यवस्था है और उपासना उस व्यवस्था से तालमेल बिठाकर खुद को बेहतर बनाने का एक मनोवैज्ञानिक विज्ञान है।
बिल्कुल, ये दृष्टिकोण हमें धर्म के बाहरी आडंबरों से हटाकर उसके असली मर्म पर लाता है, जो है आत्मसुधार और समाज सेवा।
और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये किसी एक धर्म या मान्यता में बंधा नहीं है।
ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले दोनों ही इसका लाभ उठा सकते हैं।
ये कैसे? एक नास्तिक व्यक्ति कैसे इसका लाभ उठा सकता है?
क्योंकि प्रक्रिया तो वही है। एक नास्तिक ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो भी किसी ऊंचे आदर्श जैसे सत्य, करुणा, न्याय में तो विश्वास कर सकता है। वो उस आदर्श को अपनी ध्येय प्रतिमा बनाकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है
और उन गुणों को अपने व्यक्तित्व में उतार सकता है।
हाँ, लक्ष्य तो आखिर व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाना ही है, चाहे आप उसे ईश्वर प्राप्ति कहें या आत्मविकास।
तो अंत में ये पूरी यात्रा बाहर से अंदर की ओर है। ईश्वर को खोजने की यात्रा असल में खुद को जानने और खुद को गढ़ने की यात्रा है।
हाँ, और अब मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। पूज्य गुरुदेव ने उपासना को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बताया है जिसका अंतिम लक्ष्य अपने चुने हुए आदर्श जैसा बन जाना है। तो क्या यह कहना गलत होगा कि मनुष्य जिसे ईश्वर प्राप्ति कहता है वो असल में किसी बाहरी शक्ति को पाना नहीं बल्कि अपनी ही चेतना का सर्वोच्च विकास यानी आदर्श मनुष्यता को ही प्राप्त कर लेना है?